प्रत्यक्ष दृष्टि में उस निराकार को देखोगे तो शक्ति मिल पाएगी। ये साकार तन देखकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, न कोई अनुभूति होगी। मुझ निराकार को अगर देख पाए तो मैं उस घड़ी जो दे रहा हूँ वो तुम्हें मिल पाएगा। उसके लिए भी तुम अगर निराकार स्थिति में स्थित होंगे तो मैं आत्मा परमात्मा से दृष्टि ले रही हूँ। तो बच्चे यह सब पॉसिबल है, वरना सिर्फ देखने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। देखने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर तुम भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, और मनुष्य मनुष्य को कुछ नहीं दे सकता। तुम तुम्हारे स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप पता पड़ेगा मैं कौन। मेरा वो स्वरूप तुम देख पाओगे तो तुम शक्ति ले पाओगे, वरना बच्चे शक्ति कभी नहीं मिल पाए। समझ है? और बच्चे मुरली भी सुनते हो? मेरा एक छोटा सा सवाल है, कोई एक महावाक्य है अब तक की पूरी आपकी यात्रा में जो आपने पूर्ण निराकार से सुना है, कि जब आप सुन रहे थे यह होश था कि सामने कौन है वो पूर्ण निराकार, एक महावाक्य, भले कितने भी शब्दों का हो, 2, 4, 10 शब्द, पर पूर्ण महावाक्य आपने उस निराकार से साकार द्वारा सुना है। देखो बच्चे, चेक करो, वही प्राप्ति है, वही जमा है आपका, बाकी सब ड्रामा। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 31/12/2003। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फखुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हों, परमात्म सहयोगी भुजाएं हों। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा है यह अनुभव करते हों, फखुर है ना? देखो बच्चों, अपने से अपने आप को चेक करो, परमात्म भुजाएं बने हैं? परमात्मा तो महिमा गाता रहेगा, पर क्या आप बने हो? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा बने हैं। भुजा माना बच्चे हाथ, विचार करो। बच्चे भुजाएं माना हाथ। तो छोटी सी बात, सभी बच्चे जैसे कहते हैं कि हम परमात्म भुजाएं बने हैं, भुजाएं माने हाथ। अभी अगर आपका हाथ उसकी मर्जी से चले तो आपको सेवा मिलेगी क्या? आपके जो दो हाथ हैं वो उनकी मर्जी से चले, कुछ भी करें, सेवा हो पाएगी? तो आप मानोगे कि वो आपके सहयोगी है, आपकी भुजाएं हैं? इस बात से जो समझना है समझो। तुम कहते हो ना परमात्मा भुजाएं हैं, और तुम परमात्मा के हिसाब से कहाँ चलते हो? तुम तो अपने ही हिसाब से चल रहे हो। फिर परमात्मा भुजाएं कैसे कहलाए जा सकते हैं? तुम्हारा हाथ तुम्हारे हिसाब से चलता है ना, बात समाप्त हो गई। तो तुम अगर परमात्म भुजा हो तो परमात्मा के हिसाब से चलते हो क्या? एक ही सवाल है। बाप दादा तो कहते रहते हैं सबके लिए, समझ है बच्चे? देख, विचार कर पूरा पूरा। बाबा के ऐसे पक्के बच्चे बने, देख, ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी, बुझाए हैं। विचार करो, बाबा सिर्फ इशारा करे, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, ऐसे करने वाले हो दिल से? विचार करो, पूरा विचार करो बच्चे। बाबा ने बस महिमा कर दी, तुमने मान लिया कि तुम हो, ये भ्रम है बच्चे। बन के दिखाओ, बन के दिखाओगे, और सिर्फ मुझे नहीं सबको भी दिखे कि तुम हो, तब सब सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये है, बात समाप्त होगी। जैसे मम्मा बाबा बने बाबा की भुजाए, वैसे तुम बने हो क्या? विचार करो, सारी समझ है बच्चों, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। छोड़ो परमात्म भुजाए, अपने तो साथी सहयोगी बनो अपने। अभी यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है ना, अपने तो मददगार बनो। तुम्हारा कल्याण किस में है वो तो देखो, और वो अपने कर्मेंद्रियों से स्थूल और सूक्ष्म करते जाओ। बच्चे, तुम्हारी सारी कर्मेंद्रिया सूक्ष्म और स्थूल किस लिए मिली? तुम्हारे कल्याण के लिए। पर क्या उनसे तुम आत्मा तुम्हारा कल्याण कर रही हो? विचार करो, तुम्हारी आंखों के द्वारा तुम आत्मा तुम्हारा कल्याण कर रही हो क्या? मुख के द्वारा, कानों के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, संस्कार के द्वारा कल्याण कर रही हो क्या? या फिर इनसे कोई और रस ले रहा है, मनोरंजन कर रहा है, आनंद उठा रहा है? विचार करो बच्चे, समझ है? यही कर्मेंद्रिया जब संसार की आत्माओं की सेवा में लग जाती है तो विश्व सेवाधारी बन जाती है। यही कर्मेंद्रिया तुम आत्मा की सेवा में लग जाती है तो स्व सेवाधारी बन जाती है। बस ध्यान में रखना, सारी कर्मेंद्रिया मिली है सेवा के लिए, ना कि भोग के लिए। भ्रम है तुम्हारा, सब भोग में अटके हैं। मुख का भोग, आंखों का भोग, कानों का भोग, हाथ पैर का भोग, सब भोग में अटके हैं। इससे जरा परे जाओ, आंखें परे वाला चित्र भी देख सकती है, समझ है बच्चे? सुना है किसी के पास कोई शक्ति होती है जिससे उसको इन आंखों से दिखता है वहां क्या सूक्ष्म रूप में उपस्थित है? अभी आंखों से ही देख रहा है ना, अभी कोई अलग कॉन्शियसनेस में तो नहीं गया है, माना आंखों के पास वो ताकत है, कानों के पास ताकत है, सूक्ष्म आवाज है सुनने की, सब कुछ है बच्चे, मुख के पास ताकत है सूक्ष्म संबंध संपर्क बनाने की, कम्युनिकेशन करने की, व्यवहार करने की। जरूरी नहीं कि बुद्धि मन संस्कार ही लगे, स्थूल कर्मेंद्रियों के पास भी ताकत है। आप किसी वस्तु को हाथ लगाते हो, एनर्जी सेंस होती है ना, तो हाथ के पास ताकत है ना एनर्जी सेंस करने की। किसी वस्तु में एनर्जी भरनी है तो आशीर्वाद देके या हाथ रख के भरते हैं ना, माना हाथ के पास ताकत है ना सूक्ष्म ऊर्जा ट्रांसफर करने की। यही सब लेकर तो अपना कल्याण करना है, पर ये हाथ लगे खाने पीने में, मौज में, आंखें लगी है संसार के दृश्य देखने में, मुख रहा है संसार का वर्णन करने में माया का, कान सोए पड़े संसार की बातें सुनने में, अभी इसमें बाप भी क्या करे। समझ के बात है बच्चे, ताकतें सबके पास हैं स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के रूप में, बस कोई उसे प्रयोग में नहीं लाता। समझ की बात है सारी, प्रयोग में लाओगे तो पता चलेगा, वरना जीवन ऐसे ही कट जाएगी। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को लेकर अपना कल्याण करो। तुम जो आत्मा हो उस आत्मा का कल्याण करो, बस भोग में नहीं लगाओ, होश में आ जाओ। बुद्धि दिन भर कुछ भी चित्र देखती रहती है, तुम थकते नहीं हो, और जब उसी बुद्धि को तुम्हारा स्वरूप देखना है कैसे थक जाते हो। उसी बुद्धि को परमात्मा को देखना है कैसे थक जाते हो, पता नहीं। अभी इसमें थकान की बात भी क्या है, वास्तविक रूप से संसार को देखते देखते थक जाना चाहिए, क्योंकि संसार लोअर एनर्जी में, हायर एनर्जी को देखते हुए तुम कैसे थक जाते हो। अभी देखना ही तो है बुद्धि से, और क्या करना है भाई, और क्या आत्मिक स्थिति है। एक इमेजिनेशन तो है जो दिन भर चाहो ना चाहो कुछ ना कुछ चलता रहता है बुद्धि में, एक परमात्मा का इमेजिनेशन ही तो है, उसमें कौन सी थकान। 8 घंटे का 24 घंटा करेगा कोई, पता नहीं किस बात के लिए आप लोग थक जाते हो। कोई हाथ पैर तो नहीं मारने हैं, ना कोई मुख चलाना है, ना कुछ बात सुननी है, ना आँखों से कुछ देख, ना आँखों से कुछ देखते रहना है, बस बुद्धि से तो देखना है, इसमें कौन सी थकान। बी प्रैक्टिकल बच्चे, कौन सी थकान बच्चे। अगर बुद्धि से आत्मा परमात्मा देखने में थकान लगती है, समझ जाना भारी कोई आसुरी ऊर्जा आपके अंदर है, और उसी आसुरी ऊर्जा को संसार दिखाओ। देखो थकती है क्या, रील देखने में थकती है क्या, देखो नहीं थकती, संसार देखने में नहीं थकती, थकती ही नहीं है। जरा जागरूक हो जाऊं, ध्यान पूर्वक देखो। समझ की बात है बच्चे, वही वाणी की हालत, वही कान की, वही आंख की, वही बुद्धि की, संसार के लिए थकान नहीं है, आत्मा के लिए, कल्याण के लिए थकान है। मन की हालत भी वही है, अच्छे विचार चलाने में तुम थक जाते हो। हम संगम युगी ब्राह्मण है, हम आत्मा है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, उन्हें ये शुद्ध विचार चलाने में तुम और तुम्हारा मन थक जाता है। अभी तुम असुरत्व में हो, या कहाँ पर हो? शुद्ध विचार चलाने में कैसे थक सकता है मन? बी प्रैक्टिकल भाई, जागरूक हो जाओ। अशुद्ध चलाते चलाते थकना चाहिए, पर शुद्धता में तुम थक रहे हो। कोई समझदार दिन भर सुमान करेगा, दिन भर कहेगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। नॉनसेंस विचार चलाने से अच्छा है सेंसिबल चलाए। पता नहीं आप ठिकाने पर हो ना। देखो जरा सोच के देखो इन बातों को। अच्छा विचार चलाने में आप थक जाते हो और बुरे विचार 24 घंटा चले आपको कुछ नहीं लगता, कोई थकान नहीं आती। वाह क्या स्टेट है आपकी, समझ है बच्चे? वापिस वही बात संस्कारों को लेकर। विपरीत संस्कार कितने भी इमर्ज हो जाए कुछ नहीं लगता। दिव्य संस्कार इमर्ज करने में और होल्ड रखने में कठिनाई होती है, अजीब बात है। बच्चे होश में आ जाओ, देखो चेक करो अपने आप को, तुम कहाँ पर हो। विपरीतता में अगर तुम्हें आनंद आ रहा है तो बच्चे संभल कर रहना, तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी आसुरी शक्ति विराजमान है या फिर तुम्हारे संस्कार बहुत कड़े हैं आसुरी। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को दिन भर अगर पूजा पाठ करने के लिए कहा, उसको कहा खाना पानी सब आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, थकान नहीं आना चाहिए ना दिन भर पूजा पाठ करने में? अगर थकान आ रहा है ना, कोई आसुरी तत्व है अंदर। सिंपल बात है, अच्छी बात में थकान कैसे आ सकती? हाँ शरीर बैठ बैठ के थका है, थोड़ा सा लेटा दिया सुला दिया बात निराली है, पर दिन भर वही करना है, नहीं आना चाहिए थकान। विचार करो तुम, किसी को कहा दिन भर मुरली पढ़ो, कैसे थक जाता है ब्रेन? और दिन भर बाकी सब संसार की बातें पढ़ने के लिए वहाँ कैसे रिफ्रेश रहता है? विचार करो अपने से, समझ की बात है सारी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ करो कुछ, बस मैं सूत्र बता रहा हूँ। अगर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कोई दिन भर मुरली पढ़ता रहे, दिन भर भोजन भी कर रहा है पर मुरली भी पढ़ रहा है, निवाला चबा रहा है मुरली भी पढ़ रहा है, दिन भर मुरली पढ़ता रहे सुबह से लेकर रात सोने तक, एक दिन पूरा दिन उस दिन की मुरली, कोई भी दिन हो, साकार वाणी हो अव्यक्त वाणी हो, परिणाम देखो। पढ़ना है और कुछ पढ़ना है, परिणाम देखो क्या होता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ करो, मैंने बस सूत्र बताया, दिन भर उसी में, समझ है बच्चे? पर तेज परिणाम चाहिए तो गुप्तता में करनी है, माना किसी को खबर ना हो कि तुम ये कर रहे हो। अगर तेज परिणाम चाहिए तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, लौकिक में भी अलौकिक में भी, कि तुम ये पुरुषार्थ कर रहे हो। या बात निराली या पता हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर जनरली संसार के लिए अगर गुप्त पुरुषार्थ है, परिणाम देखो दूसरे दिन क्या निकलता है। सुबह से लेकर रात सोने तक रुकना नहीं, पढ़ते जाना है, पूरी होगी वापिस ओम शांति, मुरली का सार है या रिवाइज डेट है, टाइटल है, दिन भर पढ़ते रहना शांतपूर्ण अवस्था में। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं, शांतपूर्ण अवस्था से पढ़ते जाओ दिन भर। फिर काउंट भी नहीं करना है कितनी मुरलियाँ हुई, उसमें भी नहीं जाना है, बस पढ़ते जाना है। यह एक अभ्यास है। दूसरा अभ्यास है, ये हुई वाणी की बात। दिन भर मुरली सुनना है, वही मुरली नॉर्मल आवाज में, नॉर्मल स्पीड में दिन भर मुरली सुनना है, और सुनने में अटेंशन रखना है दिन भर। परिणाम देखो क्या होता है। ये ऐसी बात है बच्चे, जैसे किसी का शरीर बहुत ज़्यादा बीमार होता है और एडमिट कर देते हैं, कभी ज़्यादा बीमार है आईसीयू में रख देते हैं, फिर परिणाम सामने आता है, ट्रीटमेंट तेज होती है एडमिट करने के बाद और परिणाम सामने आता है। बस वही बात है, आत्मा को एडमिट कर दिया, ट्रीटमेंट क्या चल रही है, मुरली। देखो क्या होता, थकान आएगी, आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा, उबासी आएगी, माया को आ रही, रुकना नहीं है, रुकना अलाउड नहीं, पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। देखो परिणाम क्या होता, सबसे ज़्यादा परिणाम पढ़ने से निकलता है, पढ़ना है, हल्की आवाज़ में पढ़ना है, ऐसे भी नहीं कि मन ही मन पढ़ना है, नहीं, हल्की आवाज़ में पढ़ना है, देखना है क्या होता है, चाहे तो हाथ भी घुमाना है। आज अनेक भुजाधारी बाप ऐसे पढ़ते जाना है, प्रिंट निकाल कर, देखो क्या होता है। एक दिन की तपस्या है, बस एक दिन। इसी प्रकार से बच्चे सारी तपस्याएं, पूरा एक दिन हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, बैठकर चलते फिरते नहीं, पूरा एक दिन हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, पूरा एक दिन शांत पूर्ण अवस्था में मैं आत्मा हूं, आत्मा देखी, अनुभव की, वापिस दूसरी बार मैं आत्मा हूं, वापिस आत्मा देखी, अनुभव की, वापिस मैं आत्मा हूँ। ऐसे पूरे दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक, परिणाम देखूँ। फिर पूरा दिन बच्चे याद, पूरा दिन याद। अभी जो विधि विधान बाबा ने सुनाया सांसों का, उसको लेकर कुछ नहीं, अभी तो बाबा ने नया दे दिया सकाश तक, इसमें बस याद, याद में बाबा से लाइट आ रही है, सांस में, सांस छोड़ रहे आपसे लाइट बाबा में जा रही, यहाँ विश्व सकाश नहीं है, याद, बाबा से लाइट आप में आ रही, आपसे बाबा में जा रही, सांस ले रहे लाइट और माइट आप में आ रही, सांस छोड़ रहे आपसे लाइट और माइट बाबा में जा रही, वो है क्लीनिंग, जो आ रही है वो है चार्जिंग। दिन भर इसी में श्वास को लेकर, जैसे विपासना में बिठाते हैं ना, दिन भर श्वासों पर ध्यान रखो, या आत्मा परमात्मा पर ध्यान रखो सांसों के साथ, ये अभ्यास है दिन भर। परिणाम देखो, फिर दिन भर ड्रिल 500 रुपये, परिणाम देखो, अनुभव करके देखो। अभी 8 घंटे की यात्रा समाप्त हुई है, अभी 8 घंटे में गारंटी नहीं आपको इतना अनुभव होगा, अभी 24 घंटे पर यात्रा आई, वरना शरीर को सुलाने का समय छोड़कर जितना समय शरीर जगा है, शरीर को लेकर तपस्या करनी, शरीर मिला ही है तपस्या के लिए, कोई खाने पीने के लिए नहीं भाई, सुलाने के लिए नहीं है, मौज के लिए शरीर नहीं मिला है, शरीर को लेकर मौज करने की आशा मत करो, अभी अंतिम समय चल रहा है, शरीर को लेकर अपना क्या साध सकते हैं यह विचार करो, मौज काफ़ी हुई, खाना पीना श्रृंगार उठना बैठना व्यवस्था बातें सब देखना सुनना, बच्चे बहुत हुआ यह सब, जरा होश में आओ, शरीर क्यों मिला है तुम्हें, किस लिए मिला है? सबने शरीर को भी भोग में ही लगा दिया, बस भोग में अटका दिया। खाने पीने का भोग, वस्त्र अलंकार का भोग, घर गाड़ी बंगले का व्यवस्था का भोग, परिवार का भोग, सब भोग में ही लग गए। और सबको यही लगता, यही जीवन है। बच्चे, ये जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है यह सब। मुख्य जीवन है आत्मिक जीवन, स्वयं की उन्नति। तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारी देह तुम्हारे कल्याण अर्थ लगी है क्या? विचार करो, या भोग में अटकी है? शरीर को कितना भी सुलाओ, कभी किसी ने कहा है कि सोने का मन नहीं, लेटने का मन नहीं, आराम का मन नहीं? आराम तो सदा चाहिए, उसे माया है वो। पर वो खुद से समझ होनी चाहिए कि मेरे शरीर को कितना आराम लगता है। दे दिया, अभी चलो पुरुषार्थ कराते हैं इस शरीर के द्वारा, और अपना कल्याण कराते हैं। आराम से क्या साध्य होगा बच्चे? ज़्यादा से ज़्यादा आयु बढ़ेगी, पर वापस वो आयु बढ़ा के करोगे क्या? अगर तुम्हें सजगता ही नहीं है तो, कि देह मिली किस लिए है? समझ है बच्चे? होश में आ जा पूरा पूरा। देख, अभी पूरे दिन के पुरुषार्थ की बात आई, अभी कहा ना हमने, पूरा दिन मुरली, पूरा दिन स्वमान, पूरा दिन योग, पूरा दिन ड्रिल, और फिर बच्चे पूरा दिन सकाश, पूरा दिन। फिर परिणाम देखो, जब चाहे करो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि ये करो, तुम्हें जो ठीक लगे, तुमसे जितना हो करो। पर अभी पूरे दिन का समय आया है कि उस दिन फोन भी बंद। समझ है बच्चे? ज़रूरी नहीं है एक दिन के लिए फ़ोन बंद किया तो कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा, और होगी कोई इमरजेंसी बात तो कर देंगे किसी और के फ़ोन पर मैसेज या फ़ोन। समझ की बात? इस प्रकार से जब आप अलग हो जाओगे और तपस्या करोगे, तब आपको असली तपस्या पता चलेगी। एक दिन में जब सिर्फ पूरी तपस्या होगी ना, मुरली के रूप में, आत्मिक स्थिति के रूप में, योग के रूप में, ड्रिल सकाश के रूप में, तब आपको पता चलेगा तपस्या क्या चीज़ है। तब तक नहीं पता चलेगा बच्चों। एक दिन पूरा उसी पर, सिर्फ यह जो समय है मुरली का, इतना मुरली में लगाया जो बाप की मुरली है लाइव, बाकी पूरा दिन तपस्या। फिर देखो परिणाम क्या निकलता है। हाँ, खाना पीना जो भी है व्यवस्था कर दी, करके रख दी, एक टाइम बनाया, दो टाइम खा लिया, हो जाता है भाई। ज़रूरत नहीं कि दो दो टाइम बनाए। समझ की बात है? दाल चावल ऐसे ही बन जाता है, टाइम नहीं लगता, 10 मिनट का काम होता है। दो टाइम भी बनाओ फिर भी सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, चाय नाश्ते को तो समय लगता ही नहीं। बच्चे, समय निकाल कर ऐसे जब पूरा दिन आप तपस्या करोगे, तब आपको परिणाम पता चलेगा। तब तक नहीं पता चलेगा बच्चे, तब तक आपको खबर ही नहीं मिलेगी कि इसका परिणाम क्या है। पूरा दिन ऐसी तपस्या बच्चे, पूरा दिन। फिर बच्चे अलग ही माहौल होता है, अलग ही आनंद होता है। सारी समझ की बातें हैं। अगर रामा हुआ, ऊपर से मर्जी हुई, कितनी बात है? आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, ड्रिल और मुरली, 5 है। मेन है मुरली, मुरली से शुरू है, सकाश तक पूरा होता है। संगम युगी ब्राह्मण की यात्रा पकड़े तो 6 है, एटलीस्ट 5 है मुख्य, मुरली, आत्मिक स्थिति, योग, ड्रिल और सकाश। ऊपर से मर्जी हुई तो हाँ, शिवरात्रि के भट्टी में 5 दिन 5 चीजें रखवा दो, दिन भर यही, दिन भर यही करना है और कुछ भी नहीं, दिन भर। संसार में तो बिजी रहते हैं, फिर भी बाप चाहता है समय निकाले। बच्चे समझ है, बच्चे सारी, तो देखो विचार करो, ये अगर हुआ तो क्या होगा, कैसी तपस्या हो। वो तपस्वी 12 साल एक ही चीज, एक ही मंत्र, एक ही पाठ, एक ही स्तोत्र, 12 साल एक ही जगह पर, समझ की बात है। मैं बस तुम्हें एक दिन ही कह रहा हूं, जब तुम तपस्या का रस चखोगे तब तुम्हें पता चलेगा तपस्या क्या चीज है। माया फिर थक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कुछ समय के बाद अभी ये हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने पक्का कर लिया है दिन भर यही करना है। माया को मार्जिन ही नहीं मिलती दिन में आने के लिए उस समय में, और दिन भर इतनी शक्ति जमा की है कि माया स्वप्न में नहीं आ सकती, रात को नींद में भी नहीं आ सकती, शक्ति ज़्यादा हो गई। ऐसे बच्चे 40 दिन तक तपस्या चलती है या उससे ऊपर, 4 मास तक, फिर बच्चे अलग अनुभूतियाँ होती है, कॉन्शियसनेस चेंज होता है। ऐसी 4 मास तक तपस्या करने के बाद पूरा कॉन्शियसनेस स्विच होता है, और फिर एक बार तुमने अनुभव लिया फिर करना क्या है, वापस बांटना है समय को, जितना समय तुम्हारे पास है उसको बांटना है। 5 चीजें, किसी के पास 24 घंटे में 10 घंटे, 2-2 घंटे में बांटना है, 2 घंटे मुरली पढ़ेंगे, और जब तक 2 घंटा मुरली पढ़कर नहीं होती तब तक 2 घंटे आत्मिक स्थिति नहीं होगी, फिर 2 घंटा आत्मिक स्थिति होने के बाद 2 घंटा योग, फिर बच्चे 2 घंटे ड्रिल, फिर बच्चे 2 घंटे सकाश, फिर वो रूटीन चलता रहेगा। पर पहले पूरे दिन की अनुभूति चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम 2 घंटे से शुरू कर सकते हो, नहीं बच्चे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ भी आप यज्ञ में जो भी बच्चे चलते हो, जितनी भी सेवा है पॉसिबल है, तो आधों को छुट्टी दे दी कि आज आप तपस्या करो, करते जाओ, ये 5 दिन आप तपस्या करो, 5 दिन हम यज्ञ संभालते हैं, आपकी तपस्या होने के बाद हम तपस्या करेंगे, आप यज्ञ संभालो, ऐसे करते फिर सब आगे बढ़ेंगे। पर बच्चे ध्यान में रखना, 24 घंटे का अनुभव चाहिए, 24 घंटे माना जितना समय शरीर का सोने का समय वो छोड़कर, जितना भी समय शरीर जगा हुआ है उसमें से 1 सेकंड भी किसी और बात में नहीं जाना चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम, पानी पीना, कुछ खिलाना, वो नॉर्मल बात है बच्चे। शरीर बहुत देर से बैठा है तो थोड़ा सा चल के आए, वो बात नॉर्मल है। अकड़ गया है तो वो नॉर्मल बात है। वो छोड़कर सारा समय उसी में लगाना है, सारा का सारा। जब ऐसी 1 दिन की तपस्या होगी तब आपको पता चलेगा तपस्या क्या चीज है। फिर जिस क्षेत्र की अनुभूति करोगे उस क्षेत्र की अनुभूति स्टार्ट होगी। फिर बच्चे भले दूसरे दिन से, जैसे मैंने कहा आपके पास 10 घंटे है तो 2-2 किए, 5 घंटे तो 1-1 घंटा लगा दिया, 1 घंटा मुरली, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 घंटा याद, 1 घंटा सकाश, 1 घंटा ड्रिल, जो भी जितना भी समय होता है, 4-5 घंटे तो हर किसी के पास होते हैं, नहीं ऐसे नहीं कह सकते, चलो कुछ नहीं 5 घड़ी है तो 1-1 घड़ी लगा दी। पर पहले बड़ा अनुभव चाहिए पूरे दिन का तपस्या का, समझ है बच्चे। एक दिन में मास्टरी आ जाती है, ये मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, एक दिन में मास्टरी आ जाती है आसानी से। एक दिन में अनुभूतियाँ शुरू हो जाती है, एक दिन में कल्याण हो जाता है, पर करना चाहिए, करेंगे तो होगा। पर उस दौरान मैं कह रहा हूँ ना, किसी से बात भी नहीं कर सकते। विपासना में जाते हो, फ़ोन करना अलाउड है क्या? घर पे 5 दिन 7 दिन जो भी तपस्या होगी उनकी, अलाउड ही नहीं। बच्चे फ़ोन जमा करने पड़ते हैं, अच्छा नियम है। बस बैठो और अपनी सांसों को देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही, टाइम टू टाइम तुम्हें भोजन मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, आराम की व्यवस्था होगी, उनके रूटीन में चलना है, अनुभूतियाँ हो जाती है। सेम बच्चे उस दिन सब बंद, यही समझो विपासना में चले गए परमात्मा के, खुद की विपासना। समझे बच्चे, होश में आ जा, करना पड़ता है। आंखों से तू उस दिन किसी को देख भी नहीं सकता, कानों से किसी को सुन भी नहीं सकता, मुख से किसी से बात भी नहीं कर सकता, तपस्या चल रही है, दूसरी ऊर्जा मिक्स हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मन बुद्धि संस्कार उनकी बात छोड़, वो सूक्ष्म है, वो यहाँ वहाँ जाएंगे, पर तू किसी काम में है तो उनको भी मार्जिन नहीं मिलेगी थोड़े समय के बाद यहाँ वहाँ जाने की। ऐसी तपस्या करनी पड़ती है अखंड, फिर बच्चे परिणाम निकलेगा, फिर अनुभूतियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से तपस्या करोगे तो 24 घंटे में जो भी 14, 15, 16 घंटे हैं, जितने घंटे तू जगा है तपस्या, बस एक ही बात बार बार, फिर बच्चे परिणाम निकलता है एकदम। समझे बच्चे, तब तक परिणाम नहीं आएगा। और यहाँ पर कोई तपस्या में बैठता है, कोई तपस्या में बैठ गए तो उनको भोजन भी उनके कमरे में पहुंचाना है, और जब कोई भोजन रख रहा है आवाज भी नहीं देनी है, बस नॉक करना है, दरवाजा खोलेंगे, भोजन रख देना है और चले आना है, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। गहरी होती है बच्चे तपस्या, कोई बात नहीं होनी चाहिए, न वो कोई बाहर की आवाज सुने। समझे बच्चे, कान में कॉटन डाल दे, दर्द हुआ ऐसा ना करे, बस कान में डाल दे ताकि बाहर की आवाजें कान पर ना आए। आंखों से तो कुछ देखना भी नहीं, पर्दे बंद, वाणी से तो किसी से बोलना भी नहीं, एक कमरे में बैठे, तब बच्चे तपस्या होते, तब वहां से कोई नया अस्तित्व जन्म लेता है बच्चे। क्यों? क्योंकि माया चली जाती, माया को पसंद नहीं है एक कमरे में बंद हो जाना, माया को तो आंखें चलाना पसंद है, वाणी चलाना, कान को कार्य में लगाना उसके, ये माया को पसंद है, हाथ पैर मारना माया को पसंद है, माया को शांति पसंद नहीं है बच्चे, बिल्कुल उसे शांति पसंद है। देखो तपस्या कर सकते हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी, कड़ी है तपस्या, कोई हठयोग नहीं है भाई, नॉर्मली है, बस कड़ी है, किसके लिए? माया के लिए, आत्मा के लिए सहज है, आत्मा का स्वभाव संस्कार है यह तपस्या। किसी को पहले से घबराहट होगी, डर लगेगा, मन माया तेज है, किसी को बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद आएगा, मन माया कम है, आत्मा ज्यादा जागृत है। देखो तुम्हें क्या अनुभूति हो रही, तुम्हें क्या लग रहा है। समझ है बच्चे, ऐसी तपस्या करनी पड़ती है तब परिणाम निकलता है, और अगर ऐसी तपस्या नहीं कर पाए परिणाम नहीं निकलेगा बच्चे।
ऐसे तपस्या से ही परिणाम निकलेगा। मर्जी तुम्हारी बच्चे, जो अच्छा लगे, बाकी छोटी मोटी तपस्या से परिणाम नहीं आएगा, ध्यान में रखना। तुम 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा तपस्या करोगे, वापस घुल मिल जाओगे, परिणाम नहीं निकलेगा। मुश्किल है बच्चे, अखंड तपस्या तब परिणाम निकलता है। बच्चे एक वैज्ञानिक को भी एक छोटा सा आविष्कार करने के लिए दिनों दिन सालों साल लैब में बिताने पड़ते हैं। उस दौरान वो भी तो किसी से बात नहीं करता, उसको अता पता भी नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। सालों साल बिताता है तब जाके एक छोटा सा आविष्कार होता है। समझ की बात है बच्चे, देख विचार कर, इस प्रकार से तपस्या कर सकता है क्या? भीड़ से अलग होकर तपस्या कर सकता है क्या? एकांत में, भीड़ में अगर तुझे रहना पसंद है तो तुझे से तपस्या नहीं होगी। तपस्या हमेशा एकांत में होती है, भीड़ में बस ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, वो भी ली तो ठीक। भीड़ में कभी तपस्या नहीं होती। हाँ, भीड़ में दूसरी और एक बात होती है, बड़ी बात, विश्व सेवा, वो संगठन में होती है। पर बच्चे तपस्या स्वकल्याण एकांत में ही होता है। बच्चे देख, एकांत आपको अच्छा लगता है क्या? विचार करो, या भीड़ अच्छी लगती? स्वकल्याण चाहते हो तो एकांत पसंद करो, स्वकल्याण। जब भी समय मिला 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घड़ी 2 घड़ी बैठे एकांत में। एकांत का अर्थ क्या है? एक तो कानों से भीड़ बंद कर देना, आंखों से भीड़ बंद कर देना, वाणी से भीड़ बंद कर देना, मन बुद्धि संस्कार से भीड़ बंद कर देना, कानों से बस अपनी आवाजें सुनना, आत्मा की, आत्मा क्या चाहती है, मुख से बस स्वप्रति बोलना, आंखों से भी स्व को देखना, बुद्धि से स्व को देखना, मन में स्व का विचार, संस्कार भी स्व के, यह है एकांत। भीड़ नहीं बच, गाड़ी आ रही है जा रही है, हॉर्न बज रहा है, बाजू में कोई आवाजें आ रही है, नहीं बच्चे, ये सब भीड़ है, यह एकांत नहीं। एकांत माना एक पर ध्यान है, पहले स्वयं पर, फिर जब स्वयं पर ध्यान पक्का हो जाता है तो महा एक जो है परमात्मा, उस पर ध्यान। समझ की बात है सारी, एकांत में ही कल्याण होगा, ध्यान में रखना बच्चे, एकांत, संगठन में नहीं, भीड़ में नहीं। समझ की बात है, सारी समझ है बच्चे। देखो विचार करो अपने से, एकांत में जा सकते हो क्या, और कितना समय जा सकते, कितने सालों के लिए रह सकते हो एकांत में अकेले? अपने आप को बनाना है ना। समझ है बच्चे, देख ध्यान में रख, भीड़ में क्या है पता है? जैसे भीड़ में आते हो वो कहते हैं अरे आपकी टोपी ठीक नहीं, ओके हम ठीक करते, अरे आपका स्वेटर ऊपर से ठीक नहीं है, ठीक कर। भीड़ में तुम दूसरे जो कह रहे वही ठीक करते चल रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, वो उनके हिसाब से उन्हें ठीक नहीं लग रहा है टोपी और स्वेटर तुम्हारा, अंदर उन्हीं बातें, कर्म बोल संकल्प दृष्टि वृत्ति उनको ठीक नहीं लग रही, इसलिए तुम्हें कह रही ये ठीक नहीं है। ये सब भीड़ में हो रहा है, एकांत में तुम्हें पता चलता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। इसलिए भीड़ में तुम जो कुछ ठीक कर रहे हो वो उनके हिसाब अनुसार है, एकांत में जो तुम ठीक करते हो वो तुम्हारे अनुसार होता है और वही तुम्हारे काम का है। समझ है बच्चे? सारे एकांत में बैठा करो। मेरे हिसाब से स्वकल्याण होने तक अपने कर्तव्य निभाकर सबको भरपूर करते एकांत में बैठना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय संसार से अलग रहो। समझ है बच्चे? अब तक तुमने भीड़ में बहुत बातें सुनी, क्या मिला? बहुत बातें बोली, क्या मिला? बहुत कुछ देखा दिखाया, क्या मिला? बहुत सारे विचार सामने रखे, दृष्टिकोण रखे, संस्कार रखे, क्या मिला? समझ है बच्चे? भीड़ का उद्देश्य एक ही होता है, देना। तुम बने हो तो भीड़ में आओ देने के लिए, और अगर नहीं बने हो तो पाने में लग जाओ, एकांत में। एकांत में ही पा सकते हो, भीड़ में सब खो जाएगा बच्चे। कभी सुना है अकेला कोई खो गया कहीं पर? नहीं बच्चे, पर क्या सुनते? भीड़ में खो गए। भीड़ में खोना ही खोना है बच्चे। तुम भीड़ में कैसे भी आओ, तुम्हारे पास जो है वो खोएगा ही खोएगा। कुछ भी है वो, एकांत में बैठो, जमा ही जमा है, मर्जी तुम्हारी। कभी सुना है एकांत में खोया पाया विभाग होता है? भीड़ के लिए होता है खोया पाया विभाग, एकांत के लिए जरूरत भी नहीं है। समझ है बच्चे? अकेले अपने आप को करो, अकेले बच्चे, सारी समझ की बात है। जितना समय एकांत में बैठोगे कल्याण होगा। और फिर पढ़ाई करो, जो कहा है ना तपस्या, एक ही पॉइंट लो, एक ही तपस्या लो और दिन भर वही। एकांत कोई विचार करने के लिए नहीं बच्चे, अभी जो मैं कह रहा हूं वो, ये कोई चिंतन के लिए नहीं है एकांत, ये तपस्या के लिए। भले एक घड़ी का एकांत है तो उस एक घड़ी में कोई एक बात उठाओ और उसी पर जोर लगाओ, उसी पर सारी ताकत लगाओ। भले अनुभूति हो या ना हो, वही करना है एक घड़ी। जैसे थे वैसे ही वापिस आए एक घड़ी के बाद तो भी मंजूर है, पर उस एक घड़ी में वही एक बात करनी, एक तपस्या करनी। समझो इन बातों को, समझो इन सूत्रों को। एकांत में बैठो और फिर तपस्या करो। और बच्चे ये सूत्र समझो, जब तक 24 घंटे की किसी बात की तुम्हारी तपस्या नहीं होती तब तक तुम्हारी तपस्या की यात्रा शुरू नहीं होगी। ध्यान में रखना, 24 घंटे एक ही बात। अभी इस भट्टी में बाप ने दिया था ना, एक ही बात दी ना, पहली ही बार सुनाया, हर घड़ी में 5 मिनट ये करो। अभी किसने किया नहीं किया वो मैं देखने नहीं जाता, तुम्हें तुम्हारे कल्याण की नहीं पड़ी तो मुझे भी नहीं पड़ी, तुम्हें जरूरत नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं भाई। समझ की बात है सारी, समझदार बनो। मैं कल्याण करने आया हूं पर जोर जबरदस्ती करने नहीं आया कल्याण के लिए। होश में आ जा, एक ही बात अखंड, अनुभूति निश्चित है। अभी तो भट्टी में 5 मिनट था, एक घड़ी में 5 मिनट, अभी सारा समय, छुट्टी बिल्कुल नहीं, 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं है। सारा समय उस दिन की उस तपस्या में लगाना है, जो भी हो, सारा समय, पॉज भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं, सोने तक। तपस्या तपस्या होती है बच्चे, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा समय किया और दिन भर कुछ भी किया, ऐसे नहीं चलता। उससे क्या परिवर्तन होगा भाई? नहीं होगा। समझदार बनो बच्चे, होश में आ जाओ। तपस्या करनी पड़ती है दिन भर, तब बच्चे प्राप्ति होती है, वरना प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो कर सकते हो तो, तुम्हारी अपनी मर्जी, अच्छा लगे तो करो बच्चे। पर जब तक तुम्हारे पास किसी तपस्या के पॉइंट का पूरा दिन नहीं है, तब तक तुम्हारी तपस्या नहीं हो सकती। कुछ भी करो, 24 घंटा उसी में बिताने हैं, माना नींद आने तक। फिर बच्चे परिणाम देखो क्या होता है। भले कितनी भी थकान लगे, मैंने पहले ही कहा है ना, कितनी भी उबासी आए, अलबेलापन, नहीं पढ़ना ही है मुरली, अच्छी लगे या ना लगे, वो उस दिन की मुरली पढ़ते ही रहना है। भले तुझे स्मृति में भी आ गई, ऐसे वाणी से पूरी मुरली भी बोल सकता है, फिर भी पढ़नी है, पढ़नी ही है दिन भर। देखो परिणाम, भले आत्मा अनुभूति हो गई, आत्मा दिखने लगी, फिर भी नहीं, दिन भर मैं आत्मा हूं, दिन भर वही, फिर देखो परिणाम। समझ है बच्चे? और इसमें कोई साधन इस्तेमाल नहीं करना है, मुरली पढ़ने के लिए बस प्रिंट, बाकी कोई भी साधन नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी साधन इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी प्रकार से। समझ है बच्चे? फिर देखो परिणाम क्या निकलता है, फिर तुम्हें मजा आएगा तपस्या में, क्योंकि परिवर्तन दिखेगा। ब्रह्मा बाप दिन रात तपस्या करते थे इस प्रकार से, तब जाके बच्चे परिणाम निकला है। ऐसे हल्का फुल्का करके क्या परिणाम निकलेगा? समझ है? आज यही पॉइंट है तपस्या का, ठीक लगे तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। भट्टी में होगा तो भट्टी के दिन बताएंगे आने के बाद, महाशिवरात्रि में। समझ है बच्चे? अपना कल्याण कर सकते हो तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्वात्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को, सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुँच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति,
ओम शांति।